परमेश्वर की महती कृपा से कल मैं बुलंदशहर गया था। स्वामी जी महाराज के घनिष्ठ संबंधियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। महाराज का प्रताप अभी भी वैसा ही बना हुआ है वहां पर जैसा उनके जीवन काल में होगा। सत्संग था एक घंटे का। अमृतवाणी के पाठ के उपरांत एक चर्चा आरंभ हुई वहां पर। इस संसार में गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, ऐसी चर्चा आरंभ हुई थी। कर्मचारी भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, काम करने वाला भी दुखी है, जिसके पास काम नहीं वह भी दुखी है, संतान वाला भी दुखी है, निसंतान भी दुखी है, प्रधानमंत्री भी दुखी है, तो एक गरीब आदमी भी दुखी है, भिखारी भी दुखी है। कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में दिखाई देता नहीं जो दुखी ना हो। संत महात्माओं ने कहा अनेक कारण हैं इस दुख के, वह तो स्पष्ट कर देते हैं ना इस बात को। परमेश्वर की सृष्टि में दुख नहीं है, दुख है तो मानव की सृष्टि में, परमात्मा की सृष्टि में दुख नहीं। मानव की अपनी कृति है ये दुख, उसके शब्दकोश में, परमेश्वर के शब्दकोश में ये दुख नाम की कोई चीज नहीं है, मानव कृति है ये। कोई कहता है दुख होता है जब व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, कोई कहता है दुख होता है व्यक्ति जब देह अभिमानी हो जाता है, कोई कहता है आदमी वह दुखी है जो अज्ञानी है, जो अविद्या से ग्रस्त है। जो भी कारण आप समझ लीजिएगा भक्तजनों, इसके मूल में एक कारण जो संतों महात्माओं ने खोज करके निकाला है, वह कारण है परमेश्वर का विस्मरण। जब परमात्मा भूल जाता है तो दुख आके रहेगा, इससे छुटकारा नहीं है। परमेश्वर का विस्मरण होता है तो अपने भीतर जो शत्रु है, आपने बेशक यदि किसी कारण किसी बल से उन्हें कमजोर भी कर रखा है तो वह भी आंख दिखाने लग जाते हैं, उन्हें परमेश्वर का भय नहीं रहता। परमेश्वर का स्मरण होने से भीतर बैठे हुए शत्रु बड़े भयभीत रहते हैं, सिर नहीं उठा सकते, इसलिए ना स्वयं को दुख पहुंचा सकते हैं ना औरों को दुख देने देते हैं। विस्मरण में आदमी स्वयं भी दुखी होता है एवं औरों को भी दुखी करता है, अकेला दुखी नहीं होता। औरों को भी दुख पहुंचाता है। घर में एक व्यक्ति के कारण अशांति है, पूरा घर नष्ट होता है। एक ही व्यक्ति लगता है दुखी है, पर नहीं, सभी के सभी दुखी होते हैं। कहते हैं ना, जिसकी जितनी याद आती है उसके उतने ही गुण हमारे अंदर बसने लग जाते हैं। परमेश्वर को निरंतर याद करोगे तो परमेश्वर के गुण, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा है, क्षमावान है, दयावान है, करुणावान है, परम कृपा स्वरूप है परमात्मा। भक्तजनों, ये गुण एक एक करके अपने भीतर बसते जाएंगे तो जीवन सुखी, अत्यंतिक सुखी होता जाएगा। परमेश्वर का स्मरण रहता है तो व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति के कर्म सब के सब परमेश्वर से प्रेरित हुआ करते हैं। परमेश्वर का विस्मरण होता है, वही वचन, वही विचार, वही कर्म स्वार्थ से प्रेरित हुआ करते हैं, अभिमान से प्रेरित हुआ करते हैं, स्वयं को भी दुखी करने वाले एवं औरों को भी दुख पहुंचाने वाले, मुंह से प्रेरित। इन चीजों से प्रेरित कर्म किसी को सुख दे नहीं पाए और किसी को सुख दे नहीं पाएंगे। इसलिए भक्तजनों, संत महात्मा बड़े बलाट शब्दों में ललकारते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, साधक जनों, अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हो, औरों को सुख पहुंचाना चाहते हो तो परमेश्वर का सतत स्मरण करते रहो। विस्मरण और स्मरण, भूलना एवं याद करना, स्वामी जी महाराज की रचनाओं में एक बड़ी बात विलक्षण लगती है। उनकी सारी रचनाएं ऐसा लगता है विरक्त के लिए भी हैं, ऐसा तो नहीं कि विरक्त के लिए नहीं है, पर अधिक ग्रस्त के लिए। ग्रस्त ही दुखी है, विरक्त को इतने दुख नहीं जितने ग्रस्त को हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज के उपदेश आदेश सब के सब ग्रस्त के लिए। इस ग्रस्त को वैकुंठ किस प्रकार से बना सकते हो, स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से सुनिए। परमेश्वर का सतत स्मरण करोगे, सपने में भी ना बिस्रे नाम, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। क्या बैठ के किसी कोने में स्मरण करना होगा? ना, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। चलते फिरते, काम करते, सैर करते, उठते बैठते, सोते जगते, खाते पीते, हर वक्त प्रयत्न करिएगा, वही सब कुछ भी होता रहे और परमेश्वर का स्मरण भी होता रहे। भक्तजनों, ऐसी साधना कहीं और नहीं है, ढूंढ के देख लो। ऐसी साधना के लिए कोई उपदेश नहीं देता, और ऐसा नहीं है कि ऐसी साधना करने के बाद किसी को परमधाम नहीं मिला, वह भी मिला। स्मरण का सर्वोत्तम साधन स्वामी जी महाराज बताते हैं, राम नाम का नित्य सत 2400 घंटों उच्चारण करते रहिएगा। इस मन को, अवारागर्द मन, स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, मन के लिए उसे अवारागर्द कहते हैं, इस अवारागर्द मन को इतना याद करिएगा राम को मन से कि ये मन कहीं अवारागर्दी करने के लिए निकल ना जाए। कितना सरल सा साधन है। आदमी योग करता है, नाक मुंह सिकोड़ता है, प्राणायाम करता है, बहुत कुछ करता है, एकांतवास जाके करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, घर बैठ के ये करो जो मैं कह रहा हूं, ये करोगे तो आपका कल्याण कोई रोक नहीं सकेगा, अवश्यंभावी होके रहेगा। इसलिए साधक जनों, जिस दिन हाथ से काम होने लग जाएगा और मुख से राम निकलने लग जाएगा, समझ लेना उस दिन अब कल्याण होने वाला है, हो गया है।
अनेक उदाहरणें हैं भक्तजनों जिन्होंने नाम का जाप किया है, परमेश्वर का स्मरण किया है एवं सबको परमेश्वर रूप देख के उनकी सेवा करी है। जब नाम का जाप करोगे तो सेवा किए बिना रह नहीं सकोगे। क्यों? आपका हर कर्म, हर सोच विचार सेवा ही तो हो जाएगा। कोई पाप रहता ही नहीं। संत महात्मा इस प्रकार की घोषणा करते हैं, व्यक्ति परमेश्वर का स्मरण करता हुआ पाप भी करता है तो वह पाप नहीं रहता, विस्मरण करता हुआ पुण्य भी करता है तो वह पुण्य नहीं रहता। क्यों? वह पुण्य भी अभिमान देके जाता है। कितना बल है परमेश्वर के स्मरण में। जो स्मरण करेगा, जो सिमरन करेगा परमेश्वर का, जो नाम परमात्मा का उच्चारण करेगा, वह इन सबको परमेश्वर देख के इनकी जी जान से सेवा भी करने लग जाएगा। एक भक्त ने की बात याद आती है भक्तजनों, मातेश्वरी अनसुईया का नाम आपने सुन रखा है, उसी की शिष्या है ये भक्तनी शांडली, सती शांडली कहते हैं इन्हें। एक ब्राह्मण कौशिक की पत्नी है, बड़ा क्रोधी है। क्रोध से तो भक्तजनों कोई बचता नहीं है ना। ये कौशिक ब्राह्मण है, पूंजीपति है, इसलिए व्यसनी है। ऐसा नहीं हर पूंजीपति व्यसनी होता है, पर प्रायः पूंजीपति जितने भी होते हैं कुछ ना कुछ रोग तो उन्हें लगा ही होता है, कुछ ना कुछ व्यसन तो उन्हें पकड़ के रखता ही है। कौशिक ब्राह्मण है जाति का, पर व्यसन लगा हुआ है इसे, क्रोधी है, प्रायः अपनी पत्नी को फटकारता रहता है। वह जी जान से सेवा करती है, अपने कर्मों के अनुसार कौशिक कोड़ी है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बाथरूम तक नहीं जा सकता, इसलिए मलमूत्र से गद्दे कपड़े शांडली ही धोती है, भोजन करवाती है। मानो जो कुछ भी उसे स्वयं करना चाहिए वह स्वयं न करके ये सती शांडली सब कुछ करती है। ऐसी पतिव्रता नारी शांडली फटकार खाती है। एक वैश्या के प्रति ये ब्राह्मण असक्त है, अपने पति की आज्ञा के अनुसार रोज रात उसे कंधों पर उठा के वैश्या के मकान पर छोड़ाती है, रात भर नीचे प्रतीक्षा करती है, भोर होते ही अपने पति को कंधों पर उठा के घर ले आती है। मातेश्वरी अनसुईया की शिष्या शांडली। एक पुत्र है योगी, एकांतवास करता है, अनेक सिद्धियों का मालिक, घर नहीं आता, बाहर रहता है, अनेक वर्षों से बाहर ही रह रहा है। आज एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ समाधिष्ठ है। कुछ एक चोर राजघराने से चोरी करके आ रहे हैं, उनके पीछे पकड़ने वाली पुलिस लगी हुई है, इसलिए अपना सारे का सारा सामान इस योगी के पास छोड़ जाते हैं, योगी पकड़ा जाता है। राजघराने से हुक्म होता है जहां से ये सामान पकड़ा गया है, कोई पूछताछ नहीं करी गई, कुछ नहीं करा गया, वहीं पर इसे फांसी पर लटका दिया जाए। राजघराने का राजा का हुक्म है, उसी पेड़ के नीचे उन्हें फांसी लगवाने का हुक्म हो गया। सौभाग्यवश, संयोगवश वही रास्ता है जहां से शांडली रोज अपने पति को कंधों पर उठा के ले जाती है वैश्या के घर और वहां से वापस लेके आती है। आज ये योगी लटका हुआ है, मरने की तैयारी कर रहा है, थोड़ा अंधेरा है, शांडली को ठीक ढंग से दिखाई नहीं दिया, पति का सिर इस लटके हुए व्यक्ति के साथ लग गया है। कौन है जो मरने वाले को परेशान कर रहा है? योगी का क्रोध या जागा, कौन है जो मुझे आराम से मरने भी नहीं दे रहा? शाप दे दिया, सूर्य उदय होने से पहले पहले तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। शांडली कहती है, क्षमा कीजिएगा महाराज, दोष इनका नहीं, छुए ये हैं, पर दोष मेरा है जिनके कंधों पर ये विराजमान है महाराज, दोष मेरा है, जो शाप देना हो मुझे दीजिएगा, इन्हें शाप ना दीजिएगा। योगी और क्रोधित होता है, मेरे शाप को कोई जुठला नहीं सकता, सूर्योदय होने से पहले पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी, सती का सतीत्व जाता। नाम की उपासना करी हुई है और पति की सेवा करी हुई है भक्तजनों, इसके अतिरिक्त संत महात्मा एवं शास्त्र कहते हैं शांडली ने इन दोनों चीजों के अतिरिक्त कुछ नहीं किया हुआ, नाम का जाप किया हुआ है और अपने पति को परमेश्वर मान के उनकी सेवा करी हुई है। सतीत्व जागा, कहा जब कल से सूर्य उदय नहीं होने दूंगी। तीन दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पे सब देवी देवता त्रसित हो गए हैं, संत महात्मा इकट्ठे हो गए। इस वक्त शांडली को मनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए शांडली के गुरु के पास जाते हैं, मातेश्वरी अनसुईया के पास। मातेश्वरी के पास करो हमारे ऊपर, अपनी शिष्या को मनाओ, तीन दिन से सूर्य उदय नहीं हो रहा, अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, कृपा करो हमारे ऊपर, कृपा करो हमारे ऊपर। गुरु आज्ञा को कौन डाले, अच्छा शिष्य तो नहीं डालता। अच्छा शिष्य जिसे कहा जाता है वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसी विश्वास से सबके सब मातेश्वरी अनसुईया के पास आए। चलिए मां, माधेश्वरी अनसुईया शांडली को कहती है, बिटिया सूर्य को छोड़ दे, उदय होने दे, मैं तेरे पति को जिंदा करवाऊंगी। एक सती दूसरी और सती, एक शिष्या दूसरी गुरु। शांडली सूर्य उदय होने देती है, उदय होते ही पति का शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है। पति भी प्रायश्चित कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, शांडली के लिए बहुत क्षमा कर दिया, अनेक बातें कही, मांगी क्षमा, बहुत कुछ हुआ, बीच की बातें हैं, पर जो कहने वाली बात है भक्तजनों वह मात्र ये, मातेश्वरी अनसुईया ने पति के प्राण लौटाए, स्वस्थ युवक बन गया है ब्राह्मण कौशिक। ब्राह्मण कौशिक शांडली के पांव पकड़ के उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं। शांडली सती है, कहती है महाराज सच मानिएगा, ये आपकी सेवा का प्रताप है, जो नाम जपता है वह सब में नामी को देख के उनकी सेवा करता है। सिमरन का यही महत्व है, परमेश्वर का सिमरन कीजिएगा, सतत सिमरन कीजिएगा। क्या यही पर्याप्त है, कैसे करना चाहिए, यह आवश्यकता तब पड़ती है जब इस उपासना से आप सर्वोत्कृष्ट लाभ लेना चाहते हैं, सुगम लाभ लेना चाहते हैं, तुरंत लाभ लेना चाहते हैं और भरपूर लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारी नाम की उपासना ये साधना किस प्रकार की होनी चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर बात विस्तार पूर्वक तो नहीं कही जा सकेगी, मात्र संकेत बिंदु दिए जाएंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी नाम की उपासना जो है ये साधना तुरंत और बड़ी सुगम फलवती हो जाएगी, भरपूर लाभ होगा। नाम आपका अपना रंग हमारे ऊपर चढ़ाए बिना रह ही नहीं सकता, स्वयं वह इतना रंगीला है, वह हमें ना रंगे ये हो ही नहीं सकता। पर कुछ एक बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम नाम का जाप इस प्रकार करिएगा कि परमेश्वर का सिमरन सतत बना रहे, ये एक बात है। हमारी उपासना तो बार बार उच्चारण करना ही उपासना है। ध्यान तो हम बहुत कम लगाते हैं या भजन कीर्तन तो हम बहुत कम समय के लिए करते हैं। मुख्य उपासना तो हमारी बार बार नाम का उच्चारण करना ही है, जिसे जाप कहा जाता है। जाप इस प्रकार से करिएगा कि परमेश्वर का सिमरन इतना करिएगा कि परमात्मा का सिमरन नित्य बना रहे, निरंतर बना रहे, सतत बना रहे। ये एक बात। मन में तड़प इस प्रकार की होनी चाहिए, एक राम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। मानो कोई पूछे आपसे, आप नाम की उपासना क्यों कर रहे हो? धन उपार्जन के लिए, व्यापार अच्छा चले इस चीज के लिए, संतान अच्छी निकले और संतान आ जाए इस चीज के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए, किस चीज के लिए कर रहे हो? तो उत्तर दीजिएगा, इनमें से किसी चीज के लिए नहीं, राम के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए नाम की उपासना कर रहे हैं। दो बातें। तीसरी बात, सब में राम है, राम में सब हैं और सब राम हैं। कठिन बातें हैं करने के लिए, इन्हें जीवन में उतारना बहुत कठिन बात है, लेकिन लाभ भी तो देखिएगा, परमात्मा आपकी मुट्ठी में हो जाएगा यदि ये बातें आप करना आरंभ कर देंगे। उपलब्धि कोई छोटी नहीं है। 2500 रुपया महीने का या 100 रुपया दिन का या 200 रुपया दिन का कमाना होता है। सुबह व्यक्ति घर से निकलता है, रात को थका मांदा घर आता है, तब जाके एक मामूली सा नश्वर कुछ सिक्के कुछ नोट मिलते हैं। यहां तो अनश्वर चीज शाश्वत चीज प्राप्त होने वाली है। इसके लिए यदि इतना भी नहीं कर सकते तो फिर किस चीज के लिए करोगे? जिन चीजों के लिए कर रहे हो उनसे तो पेट भरने नहीं वाला है, उनसे आपकी मांगे कभी पूर्ण होने नहीं वाली है, जितनी मर्जी करते रहे। सब कुछ भी मिल जाए, यदि परमेश्वर के चरणों में प्रीति नहीं मिली हुई है तो जीवन में अभाव सदा खटकता रहेगा। सब कुछ है लेकिन ऐसा लगता है अभी जो कुछ होना चाहिए था वह नहीं हुआ, मानो जन्म जन्म भी इस प्रकार बीत रहे हैं, इस कारण वह अभाव अभी भी खटक रहा है। क्यों? जो असली चीज मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिली है और यह खटकता रहेगा। मत सोचिएगा, यदि इसकी प्राप्ति की ओर आप ध्यान नहीं देते तो अभाव जो है वह आपका पूर्ण हो जाएगा। यह बात बिल्कुल गलत। राम सब में है, सब राम में है, राम ही सब कुछ है, सब राम का है। यह तीसरी बात जीवन में आनी चाहिए नाम की उपासना में। अपने ऊपर, औरों के ऊपर, अपने इर्द गिर्द सारे संसार में जो भी घट रहा है वह राम की परम इच्छा से घट रहा है, ये इन आंखों से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। चौथी बात, ध्यान देना माताओं, जो लाभ आज वर्णन किया जा रहा है इससे बड़ा लाभ सारे संसार में कोई नहीं है। इसलिए ये बातें भी थोड़ी बड़ी बड़ी जीवन में लाने योग्य, असंभव नहीं है, कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं है। क्यों? संतों महात्माओं ने ये बातें अपने जीवन में उतारी हुई हैं, लाई हुई हैं, उनको ये सारा लाभ प्राप्त हुआ है, इसीलिए तो आपकी सेवा में ये सब बातें प्रस्तुत की जा रही हैं। जो कुछ घटता है राम इच्छा से घट रहा है, ये बात पक्की हृदयंगम होनी चाहिए। मन से, वाणी से, शरीर से परम शुचिता होनी चाहिए, परम पवित्रता होनी चाहिए अपने जीवन में। तब झोली में राम बिठाते हैं, तब आपकी झोली में राम बैठते हैं। जब इन सब बातों का ध्यान रखोगे, जब ये सब बातें जीवन में आएंगी। क्या बातें हैं जो हमारे जीवन में ये उतरने नहीं देती? कुछ एक बात आए तो है ना, जो इन बड़ी बड़ी बातों को हमारे जीवन में उतरने नहीं देती और नाम का रंग हमारे ऊपर चढ़ने नहीं देती। क्यों? अभी तक हम बेरंग हैं, अभी तक राम रंग चढ़ा नहीं हुआ है। क्या बातें हैं, उन सब का भी वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक नहीं किया जाएगा, लेकिन नाम अवश्य आपकी सेवा में आज रखे जाएंगे। सर्वप्रथम गुरु में अविश्वास, यही नहीं पता हमारा गुरु कौन है, बड़े भारी दुविधा। ये स्वामी जी महाराज हमारे गुरु हैं या प्रेम जी महाराज हमारे गुरु हैं, ये बड़ी भारी दुविधा। बड़े बड़े लोगों को ये दुविधा ग्रस्त किए हुए है, ये निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। जब निर्णय ही नहीं ले पाते हो तो उनसे कुछ लाभ नहीं होने वाला। इसको कहते हैं गुरु में अविश्वास, उनकी करनी में अविश्वास, उनकी कथनी में अविश्वास। अब अविश्वास है तो अगले जन्म में मिलने के लिए तैयार रहिएगा। माफ करना, क्षमा करना ऐसी बातें, पर ये सत्य बातें, शास्त्र के अनुकूल बातें पढ़िएगा, औरों से पूछिएगा। जो यहां कहा जाता है वह गलत कहा जाता है या सत्य कहा जाता है, ताकि आपको कोई संदेह न रहे। अगले जन्म के लिए तैयारी करिएगा, मिलेंगे, देखेंगे कौन गुरु आपको तब मिलता है। गुरु में अविश्वास, गुरु में जब अविश्वास कहा जाता है तो स्पष्ट है परमात्मा में भी विश्वास ऐसा ही है। जब तक वह आपका कहना मान रहा है तब तक विश्वास, जब तक आपके कहने के अनुसार नहीं हुआ तब अविश्वास। परमात्मा के प्रति भी विश्वास ऐसा है। नंबर दो पर संतों महात्माओं ने बड़ी सूझबूझ से रखा है एक शब्द, ईर्ष्या अग्नि। अनेक दुर्गुणों में से एक दुर्गुण चुना है, क्रोध अग्नि तीसरे नंबर पर रखा है, ईर्ष्या अग्नि रखी है नंबर दो के ऊपर। बहुत बड़ी बाधा, आज थोड़ी चर्चा इसके विषय में करेंगे, पहले सभी नाम सुन लीजिएगा। गुरु में अविश्वास, ईर्ष्या अग्नि, क्रोध अग्नि नंबर तीन, हमेशा दूसरों के दोष ही देखते रहना। वैसे तो ये ईर्ष्या के अंतर्गत ही आता है, लेकिन संतों महात्माओं ने इसे नंबर चार पर अलग करके रखा है। बात तो सही भी है भक्तजनों, राम रूपी फुलवारी में आते हैं यही समझ लीजिएगा, या कहीं भी जाते हैं, फूल तो वहां कभी कभी दिखाई देते हैं, कांटे तो सदा दिखाई देते हैं। क्या करें, हमारी दृष्टि कांटों तक ही सीमित रहती है, फूल देखने योग्य हमारी दृष्टि है ही नहीं, हमने अपनी दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं लाया। इनमें दोष दिखाई देते हैं, गुरु में अविश्वास है तो राम कहां से दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे। नंबर पांच, अपने शरीर से किसी दूसरे व्यक्ति को हिंसा पहुंचानी, चोरी इत्यादि, कुछ और कुछ करना, ये नंबर पांच। अंतिम बात, असंयमी जीवन। असंयमी जीवन साधक के लिए बड़ा घातक जीवन है। जिसका जीवन मर्यादित जीवन नहीं है वह साधना में सफलीभूत इतनी आसानी से नहीं हो पाता, लंबा अरसा लगेगा, संभवतया कुछ एक जन्म। परमेश्वर का विधान है भक्तजनों, वह इसे टालता नहीं है, वह उसके अनुसार चलता है। जहां उसे यह आवश्यकता महसूस होती है मेरे विधान के अनुसार किसी ना किसी प्रकार के ब्रह्मचर्य के पालन की आवश्यकता है, वह आपको ब्रह्मचर्य का पालन आपसे करवाते रहेगा, तब आपको जो कुछ देना है देगा, इससे पहले नहीं। देखिएगा, अपने जीवन में भी देखिएगा, औरों के जीवन में भी ये बात देखिएगा। असंयमी जीवन विनष्ट विनाश की ओर ले जाता है, और संयमी जीवन परमेश्वर की ओर, विकास की ओर ले जाता है। एक विकास की ओर ले जाता है, दूसरा विनाश की ओर ले जाता है। ये सब बाधाएं हैं, इनमें से जो शेष थोड़ा सा समय रह गया है आज ईर्ष्या की बात करते हैं।